नमस्कार प्रिय श्रोताओं, सत्यवचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस अध्ययन माला में इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस द्वारा लिखी गई कुलुसियों नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन माला से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए श्रोता मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से कुलुसिये की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे पौलुस ने बंदी गृह में रहते हुए लिखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि पौलुस अपनी प्रेरिताई को सिद्ध करने के बाद सबका अभिवादन करता है, फिर उन्हें आश्वासन दिलाता है। तो आप मेरे साथ कुलुसियों की पत्री एक अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे परमेश्वर के पास जा सकते हैं। मसीह में अवस्थित प्रत्येक जन को परमेश्वर के निकट सीधा आने का सौभाग्य प्राप्त है। लिखा है, तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके। पौलुस जिन लोगों के लिए प्रार्थना करता था, उनकी सूची तैयार करना एक चुनौती भरा काम है। उसमें आप कुलुसी के विश्वासियों के नाम भी जोड़ लें। वह उन्हें सदैव प्रार्थना में स्मरण करता था। हम आगे पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य के वचन में सुन चुके हो। यहाँ पौलुस विश्वासियों के लिए त्रित्व अनुग्रह की चर्चा करता है, जिसमें हम पहला देखते हैं विश्वास पूर्वकालीन, दूसरा प्रेम समकालीन और तीसरा आशा भावी। मेरे प्रियो, पौलुस इन विश्वासियों की अच्छाइयों की चर्चा करता है। उनमें परमेश्वर पर विश्वास था। विश्वास ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होता है और विश्वास पूर्वकालीन भी होता है, अर्थात उन्होंने पूर्व समय में जो सुना था, सुसमाचार की सच्चाई का वचन, उस पर विश्वास किया था। परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के महान सत्य जो सुसमाचार में व्यक्त किए गए थे, परमेश्वर ने हमें क्रूस में बंद किया है और वह कहता है कि हम विश्वास करें। आप जब तक विश्वास करने योग्य कोई बात नहीं सुनते, तो आपने वास्तव में सुसमाचार नहीं सुना है। सुसमाचार हमारे लिए कुछ करने का संदेश नहीं है, सुसमाचार हमें सुनाता है कि प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए 2010 साल पहले क्या किया। रोमियो के पत्र 10 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जी हाँ, विश्वास अंधकार में छलांग लगाना नहीं है। विश्वास ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होता है और परमेश्वर पर विश्वास दिलाता है। सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। विश्वास पूर्वकालिक है परंतु प्रेम समकालीन होता है। अपनी मसीही शिक्षाओं में अवस्थित रहने की डींग मारें और अपने भाई को क्रूस पर चढ़ा दें, उसमें दोष ढूंढें तो हमारा दावा मूर्खतापूर्ण है। आज अनेक अद्भुत पवित्र जन हैं जो अपने सहविश्वासी को तुच्छ समझते हैं क्योंकि वह उनके ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंचा है और उनके समान सबसे अलग नहीं है। मेरे मित्रों, संसार किसी के उच्च स्तरीय जीवन को नहीं देखना चाहता है। संसार देखना चाहता है कि हम में प्रेम है या नहीं। अपने आप को विश्वासी कहना और फिर अपने भाई पर प्रेम प्रदर्शन न करना, यह किस प्रकार का विश्वास है? यदि किसी भाई के साथ हमारा मतभेद है तो हमें उसे सहन करना होगा क्योंकि उसके लिए प्रार्थना करना है, उससे प्रेम बनाए रखना है। सदा स्मरण रखें कि एक विश्वासी अनुग्रह द्वारा उद्धार प्राप्त पापी है। इस जीवन में हम में एक भी सिद्ध नहीं है। एक बार मेरे पास एक मनुष्य किसी मसीही अगुए की आलोचना करने के लिए आया। मैं भी उस अगुए की हर बात से सहमत नहीं हूं, परंतु पवित्र आत्मा उसे अति सामर्थी रूप से काम में ले रहा था। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं? उसने कहा, जी नहीं। मैंने उसे सुझाव दिया, मेरे विचार में आपको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। आप उससे हर बात में सहमत ना हो, परंतु परमेश्वर उसे सामर्थ्य रूप से काम में ले रहा है। जी हाँ, कुलुसी के विश्वासियों में अच्छे गुण थे। वे विश्वास में दृढ़ हैं। वे अपने धर्म सिद्धांतों में रूढ़िवादी थे। उनमें परस्पर प्रेम भी था। पौलुस कहता है कि उनमें भावी आशा भी थी, आशा जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे प्रथम पत्र में भी पौलुस त्रित्व अनुग्रह का उल्लेख करता है, परंतु कुछ भिन्न रूप में, जिसे हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। वह आशा को दूसरे स्थान पर और प्रेम को अंतिम स्थान पर रखता है। क्यों? क्योंकि प्रेम चिरस्थाई है, निसंदेह प्रेम वर्तमान है, परंतु वह अनंत काल में भी प्रवेश करेगा। अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम प्रेम का प्रदर्शन इस पृथ्वी पर आरंभ कर दें। क्या आप इससे सहमत हैं? मेरे मित्रों, हमें इसमें सहमत होने की आवश्यकता है। अब यह आशा जो स्वर्ग में रखी हुई है, वह धन्य आशा है। हमें मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करना है, उसके प्रकट होने से लगाव रखना है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। सुसमाचार एक सरल संदेश है जिस पर बस विश्वास करने के लिए परमेश्वर हमें कहता है। आपसे विश्वास करने के लिए कहा गया है, परंतु कुछ तथ्यों के आधार पर। यीशु का जन्म कुमारी से हुआ था। उसने आश्चर्य कर्म किए। वह मनुष्य में परमेश्वर था। वह क्रूस पर मरा, दफन किया गया और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में लौट गया। उसने पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया बनाने के लिए पवित्र आत्मा भेजा। वह आज परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। उसका वहां होना इस बात का प्रतीक है कि हमारा उद्धार पूर्ण हो गया है। हमें उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए कहा गया है जो वह अपने शरणागतों को देता है। वह आज हमारे लिए विनती करता रहता है। मेरे विचार में वह अन्य काम भी करता है। अंत में वह पृथ्वी पर फिर से आएगा। यह सब महिमामय सुसमाचार के पक्ष में है। यह सुसमाचार के विषय हैं, जैसा पौलुस यहां पर व्यक्त करता है। आगे हम पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि सुसमाचार कुलुसे में भी वैसे ही पहुंचा जैसे संपूर्ण विश्व में पहुंचा। डॉक्टर मार्विन और विंसेंट और अनेक अन्य कुलुसी के प्रसिद्ध टीकाकार पौलुस के इससे गौरवोक्ति को स्वीकार करते हैं। मुझे भी इसे स्वीकार करने में कठिनाई होती थी। क्या सुसमाचार पौलुस की बंदी बनाए जाने के समय संपूर्ण विश्व में फैल गया था? मैं अब मानता हूं कि यह अत्युक्ति नहीं, शब्दशः सच था। तुर्किस्तान अर्थात एशिया माइनर में सार्दिस और खोदी गई रोमी सड़क को आप देख सकते हैं। पौलुस इसी मार्ग से गलातिया प्रदेश त्याग एफिसुस को गया था। उसने 3 वर्ष वहां प्रचार किया जहां संपूर्ण रोम राज्य से लोग आते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि सुसमाचार पौलुस से पूर्व रोम पहुंच गया था। यहां जगत शब्द से अभिप्राय है संपूर्ण रोमी साम्राज्य। उस समय सुसमाचार रोमी साम्राज्य में दूर दूर तक पहुंच गया था, संभवतः इंग्लैंड भी पहुंच गया था। रोमी साम्राज्य के प्रत्येक भाग में सुसमाचार पहुंच गया था। मेरे मित्रों, प्रेरित चलते रहते थे। मैं उनके किसी भी काम की आलोचना करने से पीछे हटता हूं। पौलुस के कहने का अर्थ है कि सुसमाचार संपूर्ण रोमी संसार में पहुंच चुका था, इसलिए वह कहता है फल लाता और बढ़ता जाता है। जहां भी सुसमाचार का प्रचार होगा वहां फल उत्पन्न होकर ही रहेंगे। पौलुस जो कहता है वह सच है। मैं स्वीकार करता हूं कि जब हमने रेडियो कार्यक्रम आरंभ किया था तब हमारा विश्वास दुर्बल था। मैंने वचन के प्रसारण का संकल्प तो कर लिया था, परंतु मुझे ऐसा लगता था कि मैं मुंह के बल गिर जाऊंगा और विफलता का मुंह ही देखूंगा। परंतु मेरे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह हुआ कि परमेश्वर ने अपने वचन को आशीष दी। परमेश्वर ने मेरी लाज रखी और मुझे लज्जित नहीं होने दिया। उसने कहा कि वह अपने वचन को आशीष देगा और हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि वह ऐसा ही करेगा। जी हां, फल लाता और बढ़ाता जाता है। वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना है। मैं आज पत्र पढ़कर और रेडियो कार्यक्रम द्वारा मसीह को ग्रहण करने वालों से बात करके अति आनंदित होता हूं। हमारा रेडियो कार्यक्रम आरंभ में बहुत ही अनिश्चित था, परंतु परमेश्वर ने अपने वचन को आशीष दी। मैं विश्वास ही नहीं करता, परंतु मानता भी हूं। मैं किसी से भी इस विषय विवाद नहीं करता हूं। हमारे वार्तालाप ऐसे होते हैं, भाई मैं नहीं मानता कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। मैं पूछता हूं कि आप नहीं मानते हैं? वे कहते हैं नहीं। क्या आप मुझे मनाने के लिए विवाद नहीं करेंगे? मैं कहता हूं नहीं। तब वे कहते हैं क्यों नहीं? मैं उनसे कहता हूं यह परमेश्वर का वचन है और मैं यह जानता ही नहीं मानता भी हूं। मेरे मित्रों, यह ऐसा है जैसे कोई मेरे पास आकर कहे मैं आपसे विवाद करना चाहता हूं कि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते। मैं आपको अनेक ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जिनके आधार पर यह सिद्ध हो जाएगा कि आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते। वह मुझे बौद्धिक स्तर पर हरा देगा। वह मुझे तर्क वितर्क द्वारा सिद्ध करके बताएगा कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता हूं। तब आप जानते हैं कि मैं उससे क्या कहूंगा। मेरे भाई, मैं इन विवादों को तो नहीं समझता, परंतु यह निश्चय जानता हूं कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। यह एक ऐसी बात है जो मैं ही जानता हूं। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। हमें बड़ी बड़ी बातें तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम बस जानते हैं। कई लोग तर्क वितर्क करते हैं और वे सोचते हैं कि वे बहुत बुद्धिमान हैं, परंतु वे इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर तर्क वितर्क नहीं, हमारा विश्वास चाहता है। हमें अपने ज्ञान को अज्ञान से बाधित नहीं होने देना है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। और पौलुस कहता है कि सुसमाचार फल लाता है। यह हमारा एक महान विश्वास है। कुलुसियों के पत्र 1:7 में लिखा है, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। इफ्रास कुलुसी की कलीसिया का पास्टर था। पौलुस उसे प्रिय सहकर्मी कहता है। क्या आपने ध्यान दिया है पौलुस कैसे सम्मान के साथ परमेश्वर के सेवकों के लिए कहता है सहकर्मी। पौलुस परमेश्वर के वचन के प्रचारकों के बारे में सदैव अच्छी बात कहता है, परंतु यदि उसने किसी छलने वाले को देखा तो प्रभु यीशु के समान उसकी ताड़ना करने से भी वह नहीं चूकता है। प्रभु यीशु पापियों पर अति दयावान था। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को पत्थरवाह करना था, परंतु हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह को देखिए कि उसके पाप क्षमा किए। हठी निकुदिमोस के साथ प्रभु का व्यवहार देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:2 में वह मीठी मीठी बात करता है, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का भेजा हुआ है, या दूसरे शब्दों में हम फरीसी जानते हैं। मेरे भाइयों, यदि हम कुछ नहीं जानते तो अच्छा है। प्रभु यीशु ने बड़े प्यार से उसे नीचे गिराया। यीशु ने उसके साथ बातें की तो उसका घमंड टूट गया था। निकोदिमोस कुछ बनना चाहता था, परंतु वह मशीन के समान ही था, रीति रिवाज और परंपराओं का पालन किए जा रहा था, परंतु सच तो यह है कि वह कुछ नहीं था। प्रभु यीशु उसे वहां ले आया जहां वह दीनता पूर्वक पूछता है, यह कैसे हो सकता है। तब प्रभु ने उसे क्रूस का दर्शन करवाया। वह ऐसे लोगों के साथ कैसा अनुग्रह से पूर्ण व्यवहार करता है। कुलुसियों के पत्र 1:8 में लिखा है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। मेरे मित्रों, हम इस पत्र में पवित्र आत्मा पर अधिक ध्यान दिया जाना को नहीं देखते हैं, परंतु पौलुस स्पष्ट करता है कि वे प्रेम प्रदर्शन में सफल इसलिए हुए हैं कि यह पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया था। गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को पत्र लिखते समय पौलुस ने कहा था कि आत्मा का फल प्रेम है। इस पत्री में वह इस विषय पर चर्चा नहीं करेगा। इस पत्री में वह प्रभु यीशु के मनुष्यत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा और पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को लेकर हम पर प्रकट करेगा। यह पवित्र आत्मा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आइए हम देखें पौलुस की प्रार्थना। इस अंश में कुलुसी की कलीसिया के लिए पौलुस की प्रार्थना व्यक्त है। यह प्रार्थना धर्मशास्त्र की महान प्रार्थनाओं में से एक है। यह प्रार्थना मेरे विचार में प्रत्येक आधार को छूती है और यह हमारे लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी यदि हम इस पर ध्यान दें। यह बड़ी रोचक बात है कि आज लोग इन विषयों पर प्रार्थना करते हैं, परंतु पौलुस स्पष्ट करता है कि यह तो हमारे पास पहले ही से है। डॉक्टर आयरनसाइड हमारी प्रार्थनाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पाप क्षमा कर और हमें प्रभु यीशु के लहू में धो दे, हमें अपने राज्य में ग्रहण कर, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर और मसीह के नाम में हमें बचा ले, आमीन। परंतु परमेश्वर इन सब निवेदनों को पहले ही सुन चुका है। परमेश्वर ने हमारे सब पापों को क्षमा कर दिया है। उसने तो हमें पहले ही अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचा दिया है। उसने हमें अपने पवित्र आत्मा की मुहर में छिपा लिया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस लिखता है, यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हमने जिस पल सुसमाचार पर विश्वास किया उसी पल उसने हमें अनंत काल के लिए बचा लिया है। अतः प्रार्थना में निवेदन करने की अपेक्षा इन बातों के लिए स्तुति और धन्यवाद देना चाहिए। हम विनती करते हैं की अपेक्षा हमें प्रार्थना में कहना है, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, अब हम पौलुस की इस अति उत्तम प्रार्थना को देखते हैं। पहले तो वह विनती करेगा, फिर वह उन सब बातों के लिए प्रार्थना करेगा जो परमेश्वर ने उन्हें प्रदान की है। आइए हम कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ें। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस सबसे पहले प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन्हें ज्ञान से परिपूर्ण करे। कुलुसे में ज्ञानी लोग कहते थे कि उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त है। पौलुस उन्हें लिखता है कि वह प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करे, परंतु वह इस ज्ञान को परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से जोड़ता है। सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पत्री में समझ अर्थात ज्ञान 40 बार आया है। कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय के 10 पद में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इसकी दूसरी विनती है कि वे परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे। इसका अर्थ यह है कि वे मनुष्य के सामने न झुकें और उन्हें प्रसन्न करने का भी प्रयास न करें। तीसरी विनती वह करता है कि उनमें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। एक विश्वासी फल लाने वाली डाली होता है जिसकी दाखलता प्रभु यीशु है। हमें फल लाना आवश्यक है। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। विश्वासी को शिथिल नहीं रहना है परंतु परमेश्वर के वचन में जीवित एवं विकासमान होना है। अतः परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है, यह उनके लिए पौलुस की प्रार्थना है। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय के 11 पद में लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। अब ध्यान दीजिए, उसकी 5वीं विनती है, शक्ति और सामर्थ परमेश्वर से आते हैं और पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त होते हैं। उन विश्वासियों को संपूर्ण सामर्थ में बल की आवश्यकता थी, हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता के साथ। जी हाँ, यह धीरज और सहनशीलता आनंद के साथ होना चाहिए। कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। अब आरंभ होती है वह सूची जिसके लिए पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हमारी प्रार्थनाएं धन्यवाद से भरी होना चाहिए। पौलुस धन्यवाद देता है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें ज्योति में वास कर रहे पवित्र जनों के मध्य विरासत दी है। हमें आज इस बात को थाम लेना है। हमें परमेश्वर में विश्वास रखना है और मान लेना है कि उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है। कुलुसियों के पत्री 1 अध्याय के 13 पद में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ध्यान दीजिए, पौलुस धन्यवाद देता है कि हम शैतान के राज्य से निकाल लिए गए हैं। हम संसार के मार्ग पर चलते चलते अपराधों और पापों में मरे हुए थे, परंतु अब हम उसके प्रिय पुत्र के राज्य में लाए गए हैं। आज पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का यह एक पहलू है। आप परमेश्वर के राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। आपको जो करना है वह यह है कि अपना दिल खोल करके मसीह को ग्रहण करें और उसके राज्य के वारिस बन जाएं। इस प्रकार आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है। कुलुसियों के पत्र 1:14 में लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मेरे मित्रों, अब हम उसके राज्य में प्रवेश ही नहीं करते, हमें उसमें पापों की क्षमा भी प्राप्त है। यह सदैव उसके लहू से संबंधित है। परमेश्वर कैसे भी और भावना में बहकर हमारे पाप क्षमा नहीं करता। हमारी मुक्ति उसके लहू से है। मुक्ति का अर्थ है दास को मुक्त करना। उसने हमें दासत्व से मुक्त करवाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, ताकि मैं और आप यानी कि सारी मानव जाति अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करे। मेरे मित्रों, इसमें आप भी शामिल हैं। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को आपके लिए भी भेजा। उसने अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि आपके पापों से आपको छुटकारा दे। यदि आप चाहते हैं कि आप मुक्ति प्राप्त करें, तो आज आप प्रभु यीशु के पास आएं, उस पर विश्वास करें और निश्चय ही आप अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करेंगे। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आप अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय भी लेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरा संगीत।